बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। हरि ओम, हरि रुद्रमरुता स्तन्ति दिव्येस्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति अमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति अमयोगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रीभूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसजानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सदघन चिदघन आनंद घन प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 48वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। योगस्य कुरु कर्माणि संगत तत्त्वा धनंजयः। सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योगमुच्यते। संगत तत्वाधनंजय। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग युक्त होकर कर्म कर। योगश्च कुरु कर्माणि। कर्म करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि योग युक्त होकर करना। शरीर रूपी रथ को हांकने के लिए कर्म तो करना ही होगा। शरीर निष्क्रिय नहीं रखा जा सकता। शरीर है तो शरीर के साथ कर्म है, परंतु कर्म कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं योग युक्त होकर। योग माने संबुद्धि, ईश्वर पराण बुद्धि, अपनी बुद्धि को भगवान में रखकर, परमात्मा में बुद्धि को स्थिर कर कर्म करें। और ऐसा जो कर्म है, जिस कर्म के करने से वह कर्म हमारे लिए बंधन का कारण न बने। कर्मानुबंधन्ति मनुष्य लोके। कर्म के फल को भोगने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यवस्था है। कर्मानुसार अपने अपने कर्म कर्म के साथ बरतता हुआ और उसके फलों को भोगता हुआ जीव अनंत काल से कर्ता भोक्ता बन कर्म भोग को भोगता हुआ कभी जन्मता है और कभी मरता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म, और इसी जन्म मृत्यु के बंधन में जीता हुआ जो जीव है, इससे नितांत मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग युक्त होकर कर्म करना परम आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने कहा कि योगस्तु कुरु कर्माणि। योग में स्थिति बने हमारी, अर्थात ईश्वर में बुद्धि रखे। बुद्धि जब तक ईश्वर प्राण नहीं होगी, ये सब कुछ मेरा अपना किया हुआ है, ये मेरा किया हुआ है, ये मेरे परिश्रम ने किया। बहुत से लोग कहते हैं ये जो कुछ भी बनाया है, सब का सब आपको जो दिख रहा है, ये तो मेरा अपना परिश्रम का है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो सब मैंने अपनी बुद्धि से उपार्जित किया है, ये मैंने अपनी बुद्धि से प्राप्त किया है। नारायण, बुद्धि से प्राप्त किया है, पर प्राप्त करने वाली बुद्धि को देने वाला भी कोई और है। जो कुछ यदि हम इसे केवल अपना श्रम मानेंगे, ये मैंने श्रम से प्राप्त किया, मैं हमेशा कहा करती हूँ सफलता प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, परंतु सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर भगवान की कृपा होती है और गुरुजनों की कृपा होती है। वही लोग जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये केवल मेरे परिश्रम से प्राप्त है, ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। ईश्वर ने ही मुझे ऐसी बुद्धि दे। सबकी बुद्धि के प्रेरक, सबकी बुद्धि के रक्षक, सबकी बुद्धि के संचालक और सबकी बुद्धि के स्वरूप भगवान स्वयमेव है। इसलिए विशेष करके भगवत प्राप्ति के लिए भी बुद्धि ही एक साधन है। जैसा कि पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि बुद्धि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन भी है, और बुद्धि ही सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए बाधक भी है। बुद्धि जब अहंकार के साथ जुड़ जाती है, बुद्धि में अहंकार आ जाता है, तो वह बुद्धि ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन जाती है, और वही बुद्धि जब ईश्वर पारायण बन जाती है तो वो भगवत प्राप्ति कराने में हमारे लिए साधन रूप बन जाती है। बुद्धि का संचाल अहंकार से हो रहा है या बुद्धि ईश्वर के साथ चल रही है? जो अहंकार से युक्त है वह बुद्धि बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन को भोगती हुई अनेक कर्म बंधन में बंधती चली जाती है। कर्म का ऐसा चक्रव्यूह है नारायण, एक बार एक संत नदी में स्नान संध्या वंदन करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बाज पक्षी नदी के किनारे खड़ा, जल के अंदर मछली जो चल रही है आ रही थी उसे झपटने के लिए तैयार खड़ा था। और उन्होंने संत ने देखा कि ये जल्दी से मछली को झपट लेगी, उन्होंने उसे मछली पर दया आई और उस पक्षी को हाँक कर मांसाहारी इस पक्षी को दूर किया और मछली की रक्षा हो गई। मछली की रक्षा हुई और मरण उसके बाद समय व्यतीत हुआ। कुछ काल बाद उस तपस्वी महात्मा का शरीर पूरा हुआ और शरीर पूरा होकर जब धर्मराज के पास पहुंचे और उनके कर्मों का न्याय होने लगा। ये कर्म एक जन्म का नहीं है, अनेक अनेक जन्मों के कर्म हैं। धृष्टराष्ट्र ने स्वयं भगवान से कहा था, हे केशव, मुझे ऐसा कोई अपना पाप कर्म नहीं दिखाई देता है जिस पाप कर्म के कारण मैंने ऐसा कोई कर्म किया हो जिसके कारण मुझे ये अपना अंधापन भोगना पड़ा हो, ये अंधेपन का कष्ट मुझे सहन करना पड़ा हो। भगवान ने कहा, कहते हैं कि मैं बहुत पिछले जन्मों तक अपना देख सकता हूँ। भगवान ने कहा, देखो तुम कितना देख सकते हो। उसने 70 जन्म पीछे तक देखा, कहा कि इन 70 जन्मों में मुझे कोई ऐसा पाप कर्म दिखाई नहीं देता। भगवान ने कहा, 71वें जन्म में तुम्हें पता नहीं है ना, 71वें जन्म का ये अपराध है कि तुमने एक तपस्वी के अंदर तप करते हुए संत के नेत्र में कांटा चुभो करके उनके नेत्र तुमने फोड़ दिए थे, उन्हें जो पीड़ा हुई थी उस कष्ट को झेलने के लिए तुम्हें ये शरीर मिला है। 71वें जन्म की बात दिखाते हैं। न जाने कौन से जन्म का कौन सा कर्म हमें कहाँ भोगने को मिलेगा, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता ना। गांधारी ने भी यही प्रश्न भगवान से पूछा था कि हे केशव, मुझे याद नहीं है कि मेरे से कोई पाप कर्म ऐसा हुआ हो कि जिसे एक साथ साथ सतपुत्र होने के उपरांत भी मुझे सतपुत्र का 100 पुत्र का शोक भोगने को मिले। तब भगवान ने उन्हें यही कहा था कि देखो, तुम्हें अपने पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं है। केशव, मुझे याद है, 100 जन्म तक मैं देख सकती हूँ, परंतु 100 जन्म तक मुझे दिखते हैं कि मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ। भगवान ने कहा, 100 जन्म के पीछे जाओ तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा जो तुम नहीं देख पा रहे हो। भगवान ने घटना बताई, महाभारत में इसका वृतांत है कि भगवान ने उनसे कहा कि देखो, तब तुमसे ये अपराध हुआ था, सर्प की एक घटना सुनाई। तो कहने का अर्थ था, न जाने कौन से जन्म का कौन सा कर्म है। संत तपस्वी महात्मा मरणोपरांत जब धर्मराज के पास पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि तुमसे अपराध हुआ है। अपराध क्या हुआ है कि तुमने उस पक्षी को हटाकर उससे उसका भोजन छीना है, तुम्हें उसके आहार को छीनने का अपराध लगेगा, अर्थात तुम्हें फिर जन्म लेना होगा। और महात्मा का पुनर्जन्म हुआ, पूर्व जन्म के अभ्यासानुसार इस जन्म में भी वो उसी तरह से अपने तप के कार्य को आगे बढ़ाते चले और फिर वही घटना थी। वही घटना थी कि पुनः वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो फिर देखते हैं कि पक्षी मछली को झपटने जा रही है। उन्होंने कहा कि देखो पिछले जन्म में मुझसे ये भूल हो गई है, पर इस जन्म में मैं भूल को दोहराऊंगा नहीं, ये भूल फिर से नहीं करूंगा। वो चुपचाप स्नान करके लौट आए, समय समाप्त हुआ, फिर से उनका जन्म हुआ, फिर से धर्मराज के पास पहुंचे। तब धर्मराज ने उनसे कहा कि तुमने, तुम्हारे सामने हिंसा होती रही, तुमने उसे बचाया नहीं, तुम्हारे सामने हिंसा होती रही, तुमने उसकी रक्षा नहीं की, इसके लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर से महात्मा का जन्म हुआ और फिर वही तप करते हुए उसी स्थान पर फिर पहुंचे और तिबारा फिर घटना होती है। महात्मा ने उस घटना की ओर देखा ही नहीं, अपने आप जिस लक्ष्य के लिए गए थे उन्होंने इस बार ऐसा संकल्प कर लिया है, न तो संसार में मुझे अच्छाई देखनी है और न बुराई देखनी है, मुझे तो केवल परमात्मा को देखना, सीधे सीधे मुझे अपने लक्ष्य की ओर चलना है। ततस्थ दृष्टि रखते हुए दोनों दृष्टि के, दोनों आंखों के बीच में, संत कहा करते हैं, भगवान ने मनुष्य के शरीर की इतनी सुंदर रचना की है। देखो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, तीन तरह के प्राणी महात्मा कहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका आहार नीचे से ऊपर की ओर गिरता, जैसे वृक्ष आदि, और कुछ ऐसे आहार लेते हैं जो लेटे लेटे टेढ़े होकर, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आहार ऊपर से प्राप्त होता है। तो मानव एक ऐसा श्रेष्ठ है कि जिसका आहार ऊपर की ओर है, अर्थात तो श्रेष्ठ है, और इससे इसकी श्रेष्ठता के बताते हुए भगवान ने इसके शरीर की ऐसी सुंदर रचना की है कि दोनों दृष्टियों के बीच में नासिका कर दी। बोले क्यों? क्योंकि अपनी नासिका के अग्रभाग को लक्ष्य बता के, नाशाग्री, नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को सम करते हुए भगवान ने योग में बताया ना कि हमें कैसे ध्यान करना चाहिए। बोले अपने शरीर को सम करते हुए, अर्थात दृष्टि को समचित रखते हुए उसके लिए कहा कि नासिका के अग्रभाग को देखो, माने नाक के आग भाग को देखो, कहने का अभिप्राय है कि अपनी दृष्टि को सम करते हुए। संत ने निश्चय किया कि इस जीवन में न मुझे अच्छा देखना है न मुझे बुरा देखना है। उन्होंने अच्छे को भी त्याग दिया और बुरे को भी त्याग दिया, माने उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रह गई। उनकी दृष्टि में अच्छा और बुरा दोनों को समान जानते, सिद्धयो असिद्धयो, लाभ और हानि, जय और पराजय, पाप और पुण्य। यदि हमारे लिए पाप बंधन का कारण है तो पुण्य भी बंधन का कारण है। पुण्य भोगने के लिए भी वासनागत शरीर मिलेगा और वासना के शरीर को प्राप्त करता हुआ हमें पाप भी भोगने पड़ेंगे, और उसके यातनावत शरीर को पाकर, यातनामय शरीर को पाकर हमें पाप भोगने पड़ेंगे, वासनामय शरीर को पाकर हमें पुण्य भोगना पड़ेगा। पुण्य भोगने के लिए वासना और पाप भोगने के लिए यातना, ये दोनों शरीर लेकर के हमें ये भी भोगने पड़े। इसलिए शरीर चाहे वो कैसा भी हो वह तो बंधन का ही कारण है, प्रतिक्षण क्षीण होने वाला है। इसलिए संत भगवान कहते हैं कि हमें योग युक्त होकर कर्म करना, ऐसा भी नहीं है कि हम कर्म किए बिना रह सकते हैं या संसार में कर्म बंधन का कारण जान करके हम कर्म से पलायन हो जाएं, सो भी बात नहीं। इसलिए नारायण कर्म से भागना नहीं है, कर्म में को हमें जागते हुए करना है। जागते हुए जो कर्म किया जाता है वो हमारे लिए बंधन का कारण, जो जागे सो योगी, जो जाग गया है वही योगी है, अर्थात जिसने जाग करके अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर लिया है। अपनी अपने विचार पूर्वक विचार के साथ उसने ईश्वर पारण बुद्धि कर ली है। योगस्तु कुरु कर्माणि, कर्म हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि वो कर्म कर्म न रहकर हमारे लिए बंधन का कर्म कर्म न रहकर वो कर्म हमारे लिए योग बन जाए। कर्म की सफलता योग में है नारायण, अर्थात योग वो जिसमें समता है, चित्त की समता हो, बुद्धि की समता हो, यही समता ही सबसे बड़ा योग है। समता समत्व योग मुच्यते, समता सम यही योग है। और ऐसे योग को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि बुद्धि योग हमें मिले कैसे, अपनी बुद्धि को क्योंकि इस शरीर में यदि आप गंभीरता पूर्वक विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण है क्या, इस शरीर में दो ही चीज हमें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं, एक हमारा मन और दूसरी बुद्धि। ये दो चीजें भगवान ने हमें ऐसी दी हैं, मन और बुद्धि, जिस मन के द्वारा और जिस बुद्धि के द्वारा हम जो चाहें प्राप्त करना वो कर सकते हैं। इन दोनों को इसीलिए भगवान ने कहा मया अर्पितम मनर्बुद्धि, मेरे में अपने मन और बुद्धि को लगाकर तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। ये मन भगवान में लगे और ये बुद्धि भगवान में लगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बस मन भगवान में लग जाए इतना हम चाहते हैं। याद रखना नारायण, जब तक बुद्धि से विचार नहीं होगा तब तक ये मन भगवान में स्थिर हो ही नहीं सकता। मन को भगवान में स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए प्रश्न इस बात का नहीं है कि केवल मन एकाग्र हो जाए। मैं हमेशा कहा करती हूँ मन को एकाग्र करना कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। हमारा मन एकाग्र हो गया तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मन तो एकाग्र हो जाता है, छोटा सा कांटा नुकीला लाकर आपकी उंगली में गाड़ा दिया जाए और उस उंगली में जैसे कांटा गड़ा और गड़ने के साथ पीड़ा हुई और देखें कि आप बार बार आपका ध्यान बरबस उस उंगली में उस दर्द में एकाग्र होता जाएगा, घूम फिर करके फिर आप उसी उंगली के दर्द में आ जाएंगे। इतने बड़े शरीर में एक छोटी सी उंगली पर कांटा लग गया या कोई उंगली नाखून में फांस चली आई और आपका ध्यान उसकी ओर बार बार चला आता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि उस वहां मन एकाग्र हो गया। मन तो कहीं भी एकाग्र हो सकता है परंतु मन को एकाग्र भगवान में करना वो महत्वपूर्ण है, लक्ष्य में एकाग्र करना महत्वपूर्ण है। परमात्मा में मन एकाग्र हो और ये महत्वपूर्ण है। वो कब एकाग्र होता है, जब बुद्धि से विचार होता है, विचार पूर्वक सोचो विचारो कि इस जीवन में इस मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया क्यों, ये शरीर मिला क्यों है, इस शरीर को प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है, क्या हम इसीलिए आए हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं यही करना ही इस शरीर का उद्देश्य है। यदि यही सब शरीर का उद्देश्य है तो ऐसा इस शरीर में क्या हमको प्राप्त है जो औरों को प्राप्त नहीं है, जो आज तक कुछ ऐसा कुछ है क्या आपके पास जिसे आप ये कह सकें कि ये इस मुझसे पूर्व किसी के पास नहीं था। जो भोग आपको प्राप्त हैं वो न जाने आपसे पहले कितने लोग भोग चुके, ऐसा कोई भोग नहीं है जो झूठा न हो, उससे पूर्व कई भोग चुके हैं और अब आपको भोगने को मिला है और उसके बाद न जाने कितनों को औरों को भी भोगने को मिलेगा। जो कुछ मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है, क्या ऐसी कोई चीज है जिसे मैं हम ये कह सके ये सिर्फ सिर्फ मेरे को ही प्राप्त है? तो इसलिए यदि ऐसा कुछ नहीं है तो विचार करो कि तब क्या इस जीवन का उद्देश्य यही है, भोगों को प्राप्त करना और भोगना? आखिर इस शरीर को देने के पीछे ईश्वर की इच्छा क्या रही होगी? जो शरीर इतना सुंदर है, जिसके लिए संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, बार बार हमारे सदग्रंथ कहते हैं सुलभम सुदुर्लभम, देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ है, हमारे को जो सुलभ हुआ है, प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बात हम बहुत बार सुनते हैं, दोहराते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। क्या ये शरीर इतना सुंदर, जिस शरीर को देखकर परमात्मा के लिए कहते हैं कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया और सृष्टि रचना का कार्य रचयिता ने आरंभ किया, तो सृष्टि में बहुत प्रकार के प्राणी पैदा किए और उन प्राणियों को पैदा करते हुए परमात्मा को संतुष्टि नहीं हुई। जब अंत में उन्होंने मनुष्य की रचना की तो समझिए कि उनकी सृष्टि रचना का जो हेतु था, उद्देश्य था, उसकी पूर्ति इस मनुष्य शरीर के करने से हुई और यह शरीर इतना सुंदर लगा कि स्वयं ईश्वर के अंदर भी इच्छा हो गई कि मैं इसमें जाकर रहूं, मैं इस शरीर के अंदर जाकर रहूं और ईश्वर स्वयमेव इस शरीर के अंदर आकर रहने लगे। वो ईश्वर साक्षी बनकर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति, समग्र प्राणियों के अंदर रहते हुए भी ईश्वर मनुष्य के शरीर में विशेष रूप से आकर के रहने लगे। जो ईश्वर को के रहने के लायक हो, यद्यपि वो सब व्यापक है, परंतु मन परमात्मा को भी जो इतना प्रिय कर ये शरीर है, तो इस शरीर को बनाने का प्रयोजन क्या रहा, जगत को बनाने का प्रयोजन क्या रहा? बोले इस शरीर को बनाने का प्रयोजन यही रहा कि इस शरीर से आप उन परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, अर्थात जो इस शरीर में नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप से स्थित है, उस नित्य शुद्ध मुक्तता के स्वरूप को आप जान सकें। और उन्हें जानने के लिए आपको दिया क्या? बोले दिया बुद्धि दी भगवान ने, उसकी आप पहचान कर परख कर सकें, जान सकें, उसके लिए आपको विशिष्ट प्रकार के एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्रदान की। केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि तो भगवान ने सब जीव जंतु प्राणियों को औरों को भी दे रखी है। हित अनहित पशु कर पहचाना, अपने हित और अनहित, लाभ और हानि, सुख और दुख, मान और अपमान, आदर और निरादर, इस सब की पहचान करने की बुद्धि तो भगवान ने औरों जीव जंतुओं को भी दे रखी है नारायण, ये भी सब पहचानते हैं। परंतु इतनी बुद्धि केवल स्वार्थमय बुद्धि है, परंतु आपकी बुद्धि में साक्षात परमेश्वर परमार्थ रूप से बैठे हुए हैं। मनुष्य की बुद्धि परमार्थ पारण है और इसलिए परमार्थ पारण होकर के कर्म करने का भगवान उपदेश देते हैं और ये परमार्थता ही योग है नारायण। भगवान स्वयं परमार्थ रूप से जो मनुष्य की बुद्धि के अंदर बैठे हुए हैं। विचार करें, महाभारत के इस युद्ध में दुर्योधन युद्ध लड़ना चाहता है और अर्जुन भी युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ना निश्चित हो चुका है। दुर्योधन इसलिए लड़ रहे हैं कि ये राज्य मुझे प्राप्त हो, मेरा सब कुछ जाता है तो जाए, परंतु क्योंकि भगवान ने तो ये प्रस्ताव पहले ही रख दिया है। महाराज धृष्टराष्ट्र के सामने पांडवों की ओर से भगवान ने अपनी ओर से ये प्रस्ताव रखा था कि पांडवों को उनके 5 गांव लौटा दिए जाए, और दुर्योधन ने इस बात को नकारते हुए कहा है कि मैं सुई के नोक को रखने के बराबर भी धरती बिना युद्ध की नहीं दूंगा। 5 गांव की बात तो बहुत दूर रही। दुर्योधन लड़ रहे हैं, किसके लिए? उन्हें राज्य चाहिए और अपने लिए लड़ रहे हैं। और अर्जुन युद्ध लड़ने से पहले वो जानना चाहते हैं, मैं जो युद्ध लड़ रहा हूं, ये युद्ध का लड़कर ये राज्य, अर्जुन जानना चाहते हैं कि मैं लड़ने से पहले जिससे मुझे युद्ध लड़ना है वो कौन है, और अर्जुन जो युद्ध लड़ना चाहते हैं वो अपने लिए नहीं, वो अपने सबों के लिए। इसीलिए तो अर्जुन ने कहा, प्रभु जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, उन स्वजन मित्र बंधु बांधवों को गुरुजनों को मार करके और उन्हें राज्य प्राप्त करके मैं करूंगा क्या? जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, यदि वही नहीं रहेंगे तो मैं इस राज्य का करूंगा क्या? अर्थात अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे हैं वो परमार्थ के लिए लड़ रहे हैं, और दुर्योधन जो युद्ध लड़ रहा है वो स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। प्रश्न इस बात का है कि विचार ये है कि हमारी बुद्धि परमार्थ पारायण है या स्वार्थ पारायण है। आज देखने में मिलता है कि परमार्थ की बातें तो बड़े प्रेम से हम लोग सुनते हैं, परंतु कार्य तो स्वार्थ पारायण ही होकर करते हैं। परमार्थ की बातें हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु जहां करने का समय आता है वहां हम पहले अपने हित और अपने स्वार्थ के संबंध में विचार करते हैं। इसलिए बुद्धि स्वार्थमय है, बुद्धि स्वार्थ युक्त है या बुद्धि परमार्थ युक्त है? परमार्थ परम परमार्थ स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर से बढ़कर के और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ का आशय मेरा परमात्मा से है। बुद्धि परमार्थ पारायण हुई है या स्वार्थ पारायण हुई? आज नितांततः हम स्वार्थ के साथ इतने जुड़ चुके हैं कि कोई भी कार्य बिना किसी स्वार्थ के इस ऐसा करने से मेरा क्या होगा, मेरा लाभ क्या होगा? कर्म कर्म के लिए नहीं करते हैं, कर्म स्वार्थ के लिए करते हैं। वही कर्म हमारे लिए बंधन के कारण बन जाते हैं। कर्म कर्म के लिए कब होगा? जब ईश्वर परमार्थ पारायण बुद्धि होगी तो कर्म कर्म के लिए किया जाएगा। हम जो कुछ भी कर्म कर्म से अभिप्राय धर्म है जिसका हम पालन करते हैं। धर्म कहिए, धर्म को ही कर्म कहा गया है। धर्म हम किसके लिए करते हैं? धर्म किसके लिए हो रहा है? धर्म करने का उद्देश्य किसके लिए है? धर्म परमार्थ के लिए है या धर्म केवल स्वार्थ के लिए है? इस धर्म को करने से मेरे अमुक स्वार्थ की पूर्ति होगी। यदि हम इसलिए धर्म कर रहे हैं तो वो धर्म हमारे लिए परम परमार्थ को देने वाला नहीं हो सकता। नारायण, स्वार्थवश अनेक प्रकार के भोग बंधनों में हम बंधते चले जाएं, इसलिए धर्म हमारा स्वभाव बन जाए। अर्थात कर्म करना हमारा स्वभाव बन जाए, स्वाभाविक रूप से स्वभावता में आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए, एक सूर्य भक्त भगवान सूर्य देव की स्तुति कर रहा है, और भगवान सूर्य से कह रहा है, सूर्य देव आप कितने दयालु हैं, कितने उपकारी हैं, कितना महान कार्य है आपका, आप नित्य प्रति कितना महान कार्य करते हैं कि अंधेरे के साथ लड़ाई लड़ते हैं और अंधेरे को पराजित कर, पराभूत कर आप जीत करके सकल सृष्टि को प्रकाश देते हैं। आप सबको अपने प्रकाश के साथ सबको उन्नत कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सूर्य की गर्मी से सब बढ़ते हैं। कहा महाराज, आप सब प्राणियों को उन्नत कराने वाले, बढ़ाने वाले आप हैं, आप अपने प्रकाश से सबको बढ़ा रहे हैं, आप कितना महान कार्य करते हैं। बड़े प्रेम से सूर्य देव से वार्तालाप चल रहा था। सूर्य देव ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि भक्त, जो तुम कह रहे हो सो बात सब ठीक है, परंतु तुम मेरे पर यही कह रहे हो कि भगवान तुम अंधेरे को से लड़ते हो, प्रकाश देते हो, अंधकार से लड़ते हो, सबको जीवन देते हो, परंतु मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। सूर्य नारायण कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। यदि तुम मैं कुछ करता हूँ ऐसा जो समझ रहे हो, तुम ऐसा समझ रहे हो, पर मैं ये जानता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरा स्वभाव से हो रहा है। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, सूर्य का स्वभाव है सबको बढ़ाना, सूर्य का स्वभाव है अंधकार को दूर करना। सूर्य देव कहते हैं मैं जो भी कर रहा हूं अपने स्वभाव से कर रहा हूं, उन पर कर्तापन की अनुभूति नहीं है, वो कर्ता होते हुए भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, मैं कुछ नहीं करता। और भक्त कहता है कि भगवान आप करते हैं, भगवान उनमें सकामता देख रहा है, परंतु सूर्य देव अपने स्वभाव से निष्काम है, वो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हुए भी जो हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है। याद रखना, धर्म हमारा स्वभाव से हो, सेवा हमारे स्वभाव से हो, गंभीरता हमारे स्वभाव में हो, उदारता हमारे स्वभाव में हो, सहनशीलता हमारे स्वभाव में हो, निष्कपटता पवित्रता हमारे स्वभाव में हो, निर्मलता हमारे स्वभाव में हो, निर्लोभता हमारे स्वभाव में हो, जो स्वभाव के साथ यदि धर्म के गुण जुड़ जाएंगे तो आप करते हुए, नहीं तो दानशीलता, दान करना हमारा स्वभाव, परंतु यदि स्वभाव से हट करके आप करोगे, स्वभाव में नहीं होगा तो दान करते हुए कर्तापन का अभिमान आए बिना रहेगा नहीं, कर्तापन आ ही जाएगा। मैं इतना दानी हूँ, दान करता हूँ रोज रोज, इतने ब्राह्मणों को जिमाता हूँ, इतना मैं दान करता हूँ, पर ये सब दान यदि हम करते भी हैं, आप भागवत बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, राजा नृग ने तो दान किया था, गौ दान किया था स्वर्ग जाने के लिए, परंतु गिरगिट बनकर उन्हें कुएं में जाकर गिरना पड़ा। उन्होंने गिरगिट की योनि में जाने के लिए, कुएं में गिरने के लिए दान नहीं किया था, परंतु दान किया था उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, पर जाना पड़ा। बोले क्यों? कि चूक हो गई, मैं प्रतिदिन दान करता था, कर्ता बनकर के किया था। जो कुछ भी कर्म तुम कर्ता बस समझ करके करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि उस कर्म से कभी कभी आप अच्छा कर्म भी अपने आप में कर्ता भाव रखकर करते हैं तो वो कर्ता भाव रखकर किया जाने वाला भले ही वो अच्छा कर्म ही क्यों न हो, कभी कभी वो हमारे लिए कष्ट का कारण भी बन जाता है। इसलिए ये बात याद रखें कि कर्तापन नहीं तब अपने आप को इससे कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, स्वभावता से कैसे होगा, स्वभावता के साथ अपने बुद्धि को अपने विचार पूर्वक सत्य के विचार के साथ अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगा दें। इस बुद्धि परमार्थ वरण होगी तो फिर आप जो कर्म करेंगे वह उस कर्म में कर्तापन का भाव नहीं रहेगा, अकर्ता बनकर अर्थात स्वभाव से कर्म होगा, वो हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बन सकता। इसलिए भगवान कहते हैं योग युक्त योगस्य, योग में युक्त हो जा, माने योग कौन सा युग, अर्थात समभाव के साथ बुद्धि को परमार्थ पारण बना लें, साक्षात परमेश्वर में अपनी बुद्धि को रखें, विचार पूर्वक रखें कि ईश्वर जो करा रहा है मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्रम भवतव्य साची, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ। और निमित्त अच्छे कर्म का भी होता है, याद रखना, बुरे कर्म का भी होता है। बुरा कर्म और अच्छा कर्म जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा और बुरा जब हम अपने को कर्ता समझते हैं तब इसकी प्रतीति होती है, ये अच्छा है ये बुरा है। कर्ता के लिए अच्छा और बुरा है, अर्थात जो सम बुद्धि है, जिसकी बुद्धि ईश्वर में सम हो चुकी है, उसके लिए दोनों का कोई महत्व नहीं है नारायण। वह तो केवल केवल कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, निर्लिप्त अलिप्त होकर उसकी आसक्ति नहीं होती, ऐसा कर्म कभी उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग मुच्यते, यही जीवन का समत्व योग है। और ये योग ईश्वर बुद्धि है, ईश्वर बुद्धि रखें, क्योंकि जीवन में ईश्वर बुद्धि का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ईश्वर बुद्धि नहीं बनेगी, शरीर में प्रथम दिन भी मैंने चर्चा की थी कि बुद्धि का स्थान सारथी के स्थान पर है। पहली बात तो यही है कि हमारी बुद्धि किसका वरण करती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर महाभारत का प्रसंग है कि दुर्योधन भगवान के सिराने की ओर जाकर बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों की ओर जाकर बैठ गया। भगवान विश्राम से उठे, उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो और तुम दोनों अपनी अपनी चाह को लेकर आए हो, अर्जुन की इच्छा जानी और उससे स्पष्ट हो गया कि भगवान की तो घोषणा थी कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। बिना किसी शस्त्र के भगवान अर्जुन ने अपनी इच्छा रखी कि मैं तो केशव सिर्फ आपको चाहता हूं, मुझे आप चाहिए, नारायण का वरण किया। उन्होंने कर्म करते हुए भगवान नारायण को वरण करके, भगवान नारायण को अपना करके, भगवान नारायण में अपनी बुद्धि को रखकर, अर्थात बुद्धि के स्थान पर, सारथी के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को बसाकर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़े। और उन्होंने भगवान से कहा प्रभु मैंने आपको घोड़े की रथ के डोर बागडोर नहीं पकड़ाई है, मैंने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंपी है कृष्ण, मेरे रथ पर आप सारथी के स्थान पर विराजमान होंगे और मेरा रथ का आप संचालन करेंगे। मानो अर्जुन ने अपने प्राणों को, अपने जीवन का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भगवान का वरण करके उन्होंने युद्ध लड़ा और इस युद्ध का परिणाम उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जीवन में हम कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कर्म क्षेत्र में अपने अपने कर्म क्षेत्र के मैदान पर खड़ा हुआ है, पर इस मैदान में जीत उसी की होगी जिसने अपनी बुद्धि में वासुदेव भगवान श्री हरि को बसाया हुआ है। युद्ध तो बहुत से योद्धाओं ने लड़ा, परंतु उसमें विजय का श्रेय अर्जुन को प्राप्त हुआ। बोले क्यों? क्योंकि अर्जुन ने साक्षात भगवान को अपने बुद्धि के स्थान पर बिठाया हुआ था। तो वे विचार करें कि हमने अपनी बुद्धि में किसे रखा है। हमारी बुद्धि में काम समाया हुआ है, हमारी बुद्धि में स्वार्थ समाया हुआ है, और स्वार्थ वश विवश होकर, काम से प्रेरित होकर, कभी लोभ से प्रेरित होकर, कभी मोह से प्रेरित होकर, राग से प्रेरित होकर, कभी द्वेष से प्रेरित होकर, कभी हमें द्वेष की प्रेरणा मिल रही है, कभी राग की प्रेरणा मिल रही है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, जो कुछ इनके वशीभूत होकर, प्रेरित होकर जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हमारे लिए बंधन के ही कारण हो सकते हैं नारायण। उन कर्मों से हमें कभी योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम, मेरी बुद्धि का प्रेरक कौन बना हुआ है? राम है कि काम है? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। कबहू कि एक रह सके रब रजनी इकठाऊ। सूर्य और अंधकार भला कब साथ साथ रह सकते हैं? जहाँ काम होगा वहाँ राम का अभाव होगा, जहाँ राम होगा वहाँ काम का अभाव होगा। हमारी बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? किसे हमने बसाया हुआ है? अपनी बुद्धि में राम को बसाकर हम चल रहे हैं या संसार की कामनाओं को बसाकर चल रहे हैं? कोई काम ऐसा नहीं होता जिसके मूल रूप में हमारी कोई इच्छा नहीं हो, चाह नहीं हो। हम अपनी इच्छाओं को लेकर, चाहों को लेकर, ये चाह इतनी बड़ी है नारायण, इतनी बुरी है ये चाह, किस चाह ने ईश्वर ने भी चाह रख ली, जिस चाह के कारण ईश्वर से भी एक कोटि नीचे आकर जीव बन गया। यदि ईश्वर में चाह न होती, चाह न आई होती, ईश्वर में के अंदर चाह कर ली ईश्वर ने कि इस शरीर में मैं रहूं, तो इस चाह के साथ जब शरीर में प्रवेश किया तो वो ईश्वर से जीव बन गया। जो ईश्वर से को भी जीव बना दे, इतना छोटा कर दे, तो वो चाह यदि जीव के अंदर होगी तो वो चाह हमें कहां कहां नहीं ले जाएगी, कहां कहां नहीं भटकाएगी। हमारी इच्छाएं हमें संसार में दर बदर भटकाती हैं। हम कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, हमारे अंदर आत्मबल हमें कम लगता है। उसका कारण क्या है? कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारा स्वार्थ है। जो व्यक्ति जितना स्वार्थ परायण होगा उतना ही वो निर्भीक नहीं हो सकता ना, डरा हुआ है, भयुक्त है। और जिसके अंदर चाह नहीं, चाह गई, चिंता गई, मनवा भय बेपरवाह, फिर परवाह किसकी रही? अर्थात उसके अंदर एक मस्ती है, एक आनंद है, एक सुकून है, उस पर किसी की कोई चिंता नहीं है नारायण। जिसके अंदर चाह नहीं है, इसलिए जो चाह कामना है, उन कामनाओं से युक्त बुद्धि है या कामना रहित बुद्धि है? बात केवल हमें अपनी बुद्धि को विचार करके देखना है कि मेरी बुद्धि में क्या बसा हुआ है, किस चीज का महत्व ज्यादा है। हम कहने को तो कहते हैं पर विचार नहीं करते कि हम किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती थी कि हम जब तक जीवन में प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे ना, केवल केवल उपदेश सुने, बहुत अच्छे संतों के उपदेश लगते हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु व्यवहार में लाने पर, हमें उतनी ही वो मुश्किल लग। बहुत से लोग तो केवल इसीलिए सुनते हैं कि सुनना चाहिए, चलो वो भी बात अच्छी है, सुनना चाहिए, परंतु सुनने के साथ साथ हम देखें तो सही, हम अपने आचरण में कहां तक ला। जीवन बड़ी तेजी के साथ जा रहा है ना, ये कभी मत भूलें कि शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता चला जा रहा है। प्रत्येक क्षण जैसे बूंद बूंद बरसते हुए आसमान में दूर दूर तक फैले हुए बादल बूंद बूंद बरस करके समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह से ये जीवन श्वास श्वास करता हुआ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बड़ी तेजी से अविराम दिन रात 24 घंटे बिना किसी अप्रवाह के, अपने प्रवाह के साथ शरीर घटता चला जा रहा है श्वासों के साथ, और इतने अल्प समय में हमें इतना महान कार्य करना है। जो अब नहीं कर सके तो उसे फिर कब कर सकेंगे, इसलिए हमें अभी इसी जीवन में करना है। क्या करना है? करना यही है, बस अपने को समझना है। करना है तो कुछ यही करना है कि बस अपने आप को समझना है। अपने आप को यही समझने के लिए भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है। जो अपने को समझने की भूल कर गए, और अपने को कब समझेंगे? बोले अब समझेंगे। अब कब समझेंगे? बोले अब समझेंगे, अभी समझेंगे, इसी वक्त से। विचार करो, विचार करो कि जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म केवल कर्म के लिए हो। कर्म करना है, कर्म न करने में भी रुचि न हो और कर्म की उपेक्षा भी न हो। नारायण, हम केवल ये कर्म असत्य है, झूठा है, अरे ये अनित्य है, ऐसा समझ करके कर्म की उपेक्षा भी न होने पाए, कर्म उपेक्षित न हो जाए और कर्म के से कुछ अपेक्षा भी न रह जाए। कर्म अपेक्षा और उपेक्षा से रहित होकर करना चाहिए, और कर्म अपेक्षा और उपेक्षा से रहित होकर तब होगा जब हमारी बुद्धि में ईश्वर पराणता होगी, ईश्वर के लिए होगा, और ईश्वर के लिए निरंतर विचार करते हुए। शरीर यंत्रवत कार्य कर रहा है और बुद्धि ईश्वर पराण है और ईश्वर पर मैं लगी हुई है, और निरंतर ईश्वर के लिए विचार करती हुई वह स्वयं के लिए, अपने आप के लिए विचार कर रही है, और अपने आप के लिए विचार करते हुए अपने आपा में, अपने स्वरूप में स्थित हो रही है। और इस प्रकार जो जन अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उन्होंने ही उस परम आनंद को, परम सुख को प्राप्त किया है। नारायण, वही उस परम, क्योंकि वो वही संत आप कई बार सुन चुके हैं, उपनिषद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, और आपको ये निश्चय तो हो ही चुका है कि स्वरूप आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो अपने भीतर है। स्वांतः सुखाय, अपने स्वरूप में सुख है, सच्चिद आनंद स्वरूप आप स्वयं हैं, और वो सच्चिद आनंद के स्वरूप के साथ आपका साक्षात्कार, आपका साक्षात्कार कहने से अभिप्राय आपकी बुद्धि का साक्षात्कार, आपकी बुद्धि उसके साथ जुड़े। जब तक बुद्धि योग नहीं होगा, बुद्धि का संबंध नहीं होगा, तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। बुद्धि योग बने, बुद्धि उसके साथ जुड़े, और वह सद्बुद्धि, और उसके प्रयास करने से होगी, कोशिश करने से होगी। इसीलिए इतना कहना चाहती थी, संगत्वा धनंजय, सारी आसक्ति को छोड़कर पवित्रता। भगवान धनंजय से को कह, अर्थात प्राण के समान पवित्र और अग्नि के समान तेजस्वी, प्रकाश से युक्त होकर, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म को कर, योगस्य कुरु कर्माणि, सिद्ध कर्म करते हुए सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता दोनों में सम होते हुए, समो भूत्वा समत्व योग मुच्यते, समत्व योग का आश्रय लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा गीता समता में युक्त होकर तुम कर्म करो, और ऐसा जो कर्म करने वाला है वो साक्षात रूप से भगवत स्वरूप को प्राप्त कर गया है, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आज बोलिए ओम तत्सत, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।